नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। टेलीकॉम कंपनियों के साथ ही मोबाइल यूजर्स के लिए भी बड़ी खबर सामने आई है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद जल्द ही 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। इसके बाद बोलीदाताओं को जनता और उद्यमों को 5G सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम सौंपा जाएगा। कैबिनेट के फैसले के दौरान कहा गया कि 5G स्पेक्ट्रम नीलामी के तहत सरकार 20 वर्ष की वैधता वाले कुल 72,097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की जुलाई माह के अंत तक नीलामी करेगी। मंत्रिमंडल ने नवीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए निजी उपयोग वाले नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। सरकार ने स्पेक्ट्रम के लिए अग्रिम भुगतान की आवश्यकता को खत्म किया। सफल बोलीदाता 5G स्पेक्ट्रम के लिए 20 EMI में भुगतान कर सकते हैं। बता दें कि डॉट ने 5G स्पेक्ट्रम के नीलामी का प्रस्ताव रखा था। मांग में लगातार सुधार के साथ भारत में एक साल पहले की तुलना में जून के पहले पखवाड़े में पेट्रोल की बिक्री 54% बढ़ी है। वहीं इस दौरान डीजल की खपत में 48% का इजाफा हुआ है। पिछले साल 2021 की समान अवधि में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े उपभोक्ता देश भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर का प्रकोप था, जिसकी वजह से ईंधन की मांग में गिरावट आई थी। सार्वजनिक क्षेत्र के पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 से 14 जून के दौरान 12.8 लाख टन पेट्रोल की बिक्री की। ये आंकड़ा पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 54.2% अधिक है। उद्योग के बुधवार को जारी आंकड़ों के अनुसार जून 2022 की बिक्री का आंकड़ा जून 2020 के पहले पखवाड़े में मांग की तुलना में 48.2% अधिक है और कोविड पूर्व यानी जून 2019 की 10.2 लाख टन की बिक्री से 25% अधिक है। महादर महा आधार पर पेट्रोल की बिक्री 0.8% बढ़ी है। केंद्र सरकार के 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी देने के कदम के बारे में बाजार विश्लेषकों का कहना है कि इससे उद्योग और उपभोक्ताओं को काफी फायदा मिलेगा। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि आधार मूल्य बोलीदाताओं के लिए एक मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि इसमें और कटौती की उम्मीद की जा रही थी। डेलॉइट इंडिया में भागीदार और दूरसंचार क्षेत्र के लीडर पीयूष वैश्य ने कहा कि सरकार ने मिलीमीटर वेव बैंड की नीलामी की भी घोषणा की है, जिससे 5G की वास्तविक संभावनाओं का लाभ उठाने में तो मदद मिलेगी ही, संचालकों को लागत का रणनीतिक तरीके से प्रबंधन करने में भी ये सहायक होगा। वैश्य ने कहा, 5G नीलामी का रास्ता साफ हो गया है। ये संभवतः अब तक की बहुप्रतीक्षित स्पेक्ट्रम नीलामी है, जिससे उद्योग और उपभोक्ताओं को बहुत लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि एक और अच्छी बात ये है कि संचालक बिना किसी देनदारी के 10 साल बाद स्पेक्ट्रम लौटा सकते हैं। श्रम बल में शामिल लोगों की बेरोजगारी दर जुलाई 2020 से जून 2021 के दौरान घटकर 4.2% रह गई, जो 2019-20 की इसी अवधि में 4.8% थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी आंकड़ों से ये जानकारी मिली। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के एक निश्चित अवधि पर होने वाले श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 2018-19 में बेरोजगारी दर 5.8% और 2017-18 में 6.1% थी। PLFS की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया कि बेरोजगारी दर 2020-21 में 4.2% रही, ये 2019-20 में 4.8% थी। कुल कार्यबल में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत को बेरोजगारी दर कहा जाता है। आंकड़ों से पता चलता है कि बेरोजगारी दर में पिछले 4 वर्षों के दौरान 2020-21 में कमी आई है, हालांकि इसकी रफ्तार धीमी रही है। इसी तरह पुरुषों में UR दर भी 2020-21 के दौरान घटकर 4.5% पर आ गई, जो 2019-20 में 5.1%, 2018-19 में 6% और 2017-18 में 6.2% थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी के रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में बुधवार को सोना मामूली 3 रुपए की बढ़त के साथ 50,304 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। HDFC सिक्योरिटीज ने ये जानकारी दी। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 50,301 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 304 रुपए के उछाल के साथ 60,016 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। पिछले कारोबारी सत्र में चांदी का भाव 59,712 रुपए प्रति किलोग्राम रहा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना बढ़त के साथ 1,820 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी 21.35 डॉलर प्रति औंस पर स्थिर थी। HDFC सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक तपन पटेल ने कहा, कॉमेक्स में बुधवार को सोने का हाजिर भाव 1,820 डॉलर प्रति औंस पर था। डॉलर में कमजोरी और अमेरिका में बॉन्ड पर प्रतिफल घटने से सोने की कीमतों में गिरावट थमी है। वैश्विक स्तर पर मिले जुले रुख के बीच स्थानीय शेयर बाजारों में बुधवार को लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट रही। विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी के चलते उतार चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स 152 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। 30 शेयरों पर आधारित BSE सेंसेक्स 152.18 अंक यानी 0.29% की गिरावट के साथ 52,541.39 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 200.21 अंक तक नीचे चला गया था। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 39.95 अंक यानी 0.25% टूटकर 15,692.15 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में NTPC, इंफोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, विप्रो, टेक महिंद्रा और पावर ग्रिड के शेयरों में प्रमुख रूप से गिरावट रही। वहीं दूसरी तरफ बजाज फिनसर्फ, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील और लार्सन एंड टुब्रो के शेयर लाभ के साथ बंद हुए। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।